ओम शांति। आज हम सब पिछले 3 दिनों से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट के समापन सत्र की ओर प्रयाण कर रहे हैं। कुछ ही पलों में मंचस्थ मेहमानों से सज जाएगा। तब तक मैं पीछे बैठे हुए सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा आगे आके विराजमान हो जाइए, क्योंकि ये सत्र ना सिर्फ इस हॉल में ही सुना जा रहा है लेकिन मल्टीमीडिया के माध्यम से कई जगह तक पहुंच रहा है। तो पीछे बैठे हुए सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, बहनों से भी निवेदन है कि कृपया आप आगे आके विराजमान हो जाइए। और आगे की जितनी भी सीट से उसे कवर करिए। आज का हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट का ये समापन सत्र आपके सामने खुला करते हुए मुझे बेहद खुशी है। अभी अभी जो पैनल वाला सेशन संपन्न हुआ है, मैं उन सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगी कि आप भी सभा मंडप में अपना स्थान लीजिए और अपना स्थान लेकर के इस समापन सत्र में अपनी मौजूदगी को आप प्रत्यक्ष कीजिए। बेहद खुशी होती है जब ऐसी जगहों पे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा हमेशा यही रहा है कि हमें कुछ पाना है। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी ब्रह्मा कुमारी क्रीना बहन, ब्राता कमल भाई पटेल, ब्राता रामधन जाट भाई, ब्रह्मा कुमार राजयोगी करुणा भाई जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई जी। आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि आप मंच की ओर प्रयाण करें। और तब तक मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम सब ने पिछले 2.5 दिनों से इस मंच से कुछ न कुछ सुना है। अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में पहुंच चुका है। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचने का वक्त आ चुका है। ऐसे कहा जाता है कि एक से एक मिलकर 2 होता है तो उसे गणित कहा जाता है, एक से एक मिलकर 11 होता है तो उसे संगठन कहा जाता है, एक से एक मिलकर 0 होता है उसे आध्यात्मिकता कहा जाता है, एक से एक मिलने ना दिया जाए तो उसे कूटनीति कहा जाता है, एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो उसे राजनीति कहा जाता है, एक से एक मिलकर एक रह जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। पिछले 2.5 दिनों से आपने पिछले 3 दिनों से आपने इस मंच से सुना है, जाना है, और अब वापस जाने का समय सामने आ चुका है। और आज के इस समापन सत्र को हमारे मेहमानों ने सुसज्जित कर दिया है। तो आइए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रणाली के अनुसार 1 मिनट परमात्मा पिता की याद में बैठते हैं। प्रभु पिता की याद।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले।
ओम शांति। राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट के समापन सत्र, जिसका विषय है आत्मनिर्भर गांव द्वारा स्वर्णिम भारत का पुनः निर्माण। इस विषय को लेकर के हम सब इस समापन सत्र में एकत्रित हुए हैं, तब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि आइए और इस मंच पर विराजमान मेहमानों का सम्मान और सत्कार कीजिए। ऐसे भी कहा जाता है कि विद्वानों को अगर झुकाना है तो उन्हें फूलों का भार दिया जाना चाहिए। यही पुष्प है वो परमात्मा की प्रतिमूर्ति के रूप में, हम सम्मान और सत्कार के रूप में इसका यूज करते हैं। इस तुलसी के छोटे से प्लांट ने विश्व को अनेक सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाया है, संभाला है। आज फिर एक बार हमारे मंच को इससे सम्मानित किया जा रहा है। कहा ऐसे जाता है, देश ने करवट बदली है, अब हमें भी कुछ करना होगा। लक्ष्य नहीं है बादल का, अंबर मुट्ठी में भरना होगा, अंबर मुट्ठी में भरना होगा। आप सब पूरे भारत वर्ष से पधारे हुए मेहमान इस मंच में उपस्थित है। पूरा भारत आज यहाँ उपस्थित है, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति नहीं परंतु एक संस्था उपस्थित है, और आप जिस संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आज पूरा भारतवर्ष यहाँ उपस्थित है। ऐसे सुंदर राजयोग रिट्रीट के समापन सत्र में आप सबका तहे दिल से स्वागत करने के पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी क्रीना बहन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है आप। पिछले 39 ईयर से आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। देश विदेश में आपने अपनी वाचाओं के द्वारा लोगों को राजयोग का मार्ग चिन्हित किया हुआ है। नागार्जुन, रिलायंस, बीपीसीएल, पार्ले प्रोडक्ट, ऐसे कई संस्थाओं में, कई कंपनियों में आपने मैनेजमेंट के कोर्सेज भी बहुत सुचारू रूप से चलाए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी क्रीना बहन को, जो आज हमें इस विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। ब्रह्मा कुमारी क्रीना बहन,
बहुत बहुत धन्यवाद किरण बहन जी। आप भी कच्छ में, आप एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, और कई सालों से राजयोग का अभ्यास भी करती है। आज मंच पर उपस्थित हमारे माननीय अतिथिगण और माननीय वक्तागण, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी, हरदा से पधारे हुए पूर्व कृषि मंत्री भ्राता कमल पटेल जी, बूंदी से हमारे विशेष अतिथि पधारे भ्राता डॉक्टर रामधन जाट जी, शशिकांत भाई जी, और आप सभी उपस्थित सभी श्रोतागण अपने अपने क्षेत्र के बहुत अनुभवी बैठे हैं, और इतने ध्यान से, इतने धीरज से यहाँ सुन रहे हैं, और जो भी यहाँ बता रहे हैं वो भी केवल लेक्चर नहीं है, केवल शब्द नहीं है। सबने कितनी अच्छी केस स्टडीज के द्वारा बताया कि प्रैक्टिकल में वो खेतों में या कृषि क्षेत्र में कितना अपना योगदान अनेक प्रकार से दे रहे हैं। पर्सनली मुझे बहुत बहुत दिल से खुशी हो रही है कि मुझे एक इंग्लिश में एक हम बोला जाता है डाउन टू अर्थ, माना आप जितनी भी ऊंचाई पर जाइए, कितना भी नाम आपका रोशन हो जाए, पर आप जमीन से जुड़े रहिए। तो मैंने यहां सीखा कि जो भी सभी आए हैं मेहमानों के रूप से या श्रोतागण के रूप से, सभी अपनी रीति से अनुभव के धनी है, लेकिन सभी जमीन से जुड़े हुए, विवेकशील और एक नम्र भाव को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भी ये चीज बहुत जिंदगी की एक बहुत गहन अनुभूति है, प्राप्ति है कि हम धरती पर आते हैं तो लास्ट में हम साथ में क्या ले जाएंगे, सो इम्पोर्टेंट है ना। हम धरती पर आए हैं, हम कितना भी कर्म करते हैं, पर सबसे मूल्यवान प्रश्न यही है कि हम साथ में क्या ले जाएंगे। और अगर हम उस तरफ देखें तो जो कृषि विज्ञान है या कृषि क्षेत्र है वो एक्चुअली कभी भी नुकसान में जा ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास ऐसे साक्षी है कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, इंडिया वॉज ऑलवेज कॉल्ड 80% एग्रीकल्चरल कंट्री, मोर देन 80%, और हम सबको गर्व था अपने भारत पर। लेकिन एक नई चीज आई और उन्होंने अपनी सब चीजों का प्रभाव अपने ऊपर डाला, लेकिन हमें अपनी शिक्षा से और हमें अपनी जो मूलभूत हमारा जो खजाना है उससे हमें धीरे धीरे दूर किया। क्योंकि सबसे पहला रिजल्ट ये हुआ कि परिवार टूटने लगे। पहले पूरा परिवार मिलजुल करके खेती करते थे, अपने लिए, समाज के लिए, बहुत अच्छी लेन देन होती थी आपस में गांव में। गांव बहुत खूबसूरत होते थे दिल से। कहा जाता था कि अगर आप गांव में कभी भी अचानक पहुंचो तो आपको मना अतिथि के रूप से, एक देवो भव के रूप से आपका पूरा स्वागत किया जाता था, संतोष दिया जाता था, जो शहर में कभी नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पर परिवार टूटे और लोगों को लगा कि हम शहरों में जाकर के उद्योगों में भाग ले ताकि हम ज्यादा कमाई कर सके, क्योंकि वो आकर्षण पैदा करा चुके थे। और जो हमारा सच्चा धन था वो तो अपने भारत भूमि में ही था। उद्योगों में आगे बढ़ते हुए, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद पता है क्या हुआ? हर एक उद्योगपति एक ही स्वप्न देखता था, बताएंगे कौन सा? एक उद्योगपति जो बहुत ऊंचाइयों पर गया, बहुत नाम कमाया, सब कुछ कमाया, उसके बाद एक ही स्वप्न उसका होता था, एक फार्म हाउस बनाए। लास्ट में रिजल्ट यही आता था कि अब बहुत हो चुका, अब हम कहीं शांति से एक छोटा सा एक खेती करें, अपना फार्म हाउस बनाए, सब्जियां उगाए। कितने उद्योगपतियों को, कितने लीगल क्षेत्र के लोगों को, हर एक क्षेत्र के लोगों को देखा कि आखिर में वो लोग एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल बनाकर उद्योग किया और फिर लास्ट में फिर से एग्रीकल्चरल लैंड ही ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आदि सो अंत, वही सच्चा है। जो बीच में हमने जो भी परिवर्तन लाया वो कोई ना कोई प्रभाव से लाए हैं। तो इसीलिए मुझे जिंदगी का अर्थ और कृषि क्षेत्र बहुत नजदीक लगा एकदम। जैसे मुझे लगा कि दोनों जैसे एक ही है, अगर मुझे प्रैक्टिकल जिंदगी जीनी है तो इस प्रकार का कार्य मुझे प्रैक्टिकल जिंदगी के साथ जोड़कर रखेगा। और जैसे जिंदगी कहते हैं ना, तो जी माना जिंदा दिली से करना। हम देखते हैं कि कोई भी कृषि जो है वो अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 3 बजे उसी उत्साह उमंग से, 365 डेज उसी उत्साह उमंग से अपनी खेत की ओर जाते हैं और बच्चे को साथ में उठा के दो साल का बच्चा होगा उसको भी साथ में उठा के लेके जाएंगे, उसको सिखाना शुरू करेंगे, चलो बैल को पकड़ो, चलो अभी ये हल देखो कैसे किया जाता है। वो छोटा बच्चा है 2 साल का, लेकिन उसके संस्कारों में डालने के लिए कि दिस इज व्हाट वी आर, ये हम है, हमारी सच्चाई ये है, उसको तुम अभी से अपने अंदर डाल दो। उनका मतलब ये नहीं था कि ये बच्चा शिक्षा से मना वो ना कर सके, ऐसी कोई भावना नहीं थी, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही जो है वो खेतों खलियानों में था। तो इसीलिए जिंदगी जी मना जिंदा दिली, मुर्दा दिली से क्या जिएंगे, है ना। रोज उठे, जैसे हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में अमृत वेला मेडिटेशन, कैसे जी, कैसे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए सुबह, मुर्दा दिली से कि जिंदा दिली से। नेचुरली जीवन की शुरुआत भले कोई भी क्षेत्र में हो, घर पे भी क्यों ना हो, लेकिन जिंदा दिली से होना चाहिए। तो ये मैंने देखा बहुत कॉमन फीचर है जो बाद में टूटने लगा, क्योंकि परिवार टूटा। कहा ना सहयोग की बहुत जरूरत होती है, पहले पूरा परिवार एकजुट होकर के एक दूसरे को मदद करते हुए जाते थे, फिर बच्चे समझने लगे और दूर हो गए, नेचुरली थोड़ा उत्साह उमंग तो कम हो ही जाएगा ना बड़ों का, कहां तक फिर अकेले करते रहेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि रिजल्ट, जिंदा दिली का रिजल्ट थोड़ा कम होता गया। अब ऐसा लग रहा है, आशा की किरण जाग रही है कि नहीं, फिर से अब एक नया सवेरा देखने वाले हैं। हम फिर से केवल ब्रह्मा कुमारी से ही नहीं, लेकिन संगठित रूप से, इस बार कितनी जगहों से सभी आए हैं, संगठित रूप से अगर हम मिल करके अपनी स्पिरिट, अपनी ऊर्जा को हम पॉजिटिव और ऊंचा स्तर देना शुरू करें, तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हो सकता था कि भारत एक सुपर पावर होता और सुपर एक्सपोर्टर होता, सारे खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल वगैरह पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जाता, जाता कि नहीं। लेकिन चलो वो भी हो गया जो ना हो सका, लेकिन अभी भी वक्त की पुकार है कि हम जितना हो सके अपनी भारत भूमि की महिमा को समझें, और इतना मना उत्कृष्ट जमीन भारत की है कि हमें केसेस में दिखाया कि अगर बैरन लैंड भी था जहां पर कुछ भी नहीं उग रहा था, वहां पर मेडिटेशन करके कितनी अच्छी उपज आई। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अपने अंदर का जो बीज है ना, उसको जगाओ। बीज जो हम डालते ना खेतों में, हम खुद भी तो बीज है, और हम भी इस धरती पर डाले गए हैं। अगर इस बीज को सही पानी, सही रोशनी, सही खाद, सही समझ, सही नैतिकता, क्योंकि जिंदगी न आता है नैतिकता के लिए, सही नैतिकता की जागृति हमें इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि आजकल जो वैल्यू है वो है मनी, पैसा। जब पैसा मिलने वाला होगा वो हम पहले करने को तैयार होंगे, भले हमारी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो थोड़ी। कभी ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पैसे को थोड़ा पीछे हटके वैल्यू को हम महत्व दें, ऐसा हो सकता है। मुझे बताइए 3 दिनों में पैसा याद आया, नहीं आया ना, क्या आया, क्या आया मन में, और ही सब बातें आई, है ना। मना जिंदगी हमारी केवल पैसा नहीं है, जिंदगी भरपूर है कितनी सारी चीजों से, और वो सारा खजाना किधर है, हमारे अंदर। हमारे एक भाई कहते हैं मैं टोपी रोज पहना करता हूं, तो हमने पूछा क्यों, टोपी पहनने की जरूरत नहीं है, तो कहते नहीं, जो सारा खजाना भरा है ना वो कहीं ऐसे चला ना जाए, सबको बांटना है मुझे, इसलिए मैं टोपी पहन के रखता हूं, है ना। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। आज धन के बिना भी वो व्यक्ति कहां ना कहां जाकर के उसने सेवा की, उसको धन की इम्पोर्टेंस लगी नहीं उसमें, क्योंकि जो अदर पोर्शन था, जो खजाना अंदर था, जो धनी अंदर से था, वो इतना था कि उसे कभी कोई चीज इम्पॉसिबल लगी नहीं, असंभव लगा नहीं, और कितनों को प्रेरणा दे सका। मैं ये नहीं कह रही हूं कि धन नहीं कमाना है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर लाइफ, अपने जीवन के इसके ऊपर आधारित आप नहीं कर सकते कुछ भी। जीवन बहुत अमूल्य है। 3 दिन के मेडिटेशन में आपको रियलाइज होगा कि लाइफ हमारी कितनी 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 वैल्यूएबल है। और लोगों के कहने पर पता नहीं हमने क्या कर दिया अपने आप को, है ना, लोगों के प्रभाव में आकर के, नेगेटिविटी के प्रभाव में आकर के हमने अपनी जो असलियत है, जो अपनी वास्तविकता है, उससे हम बहुत बहुत दूर चले गए। तो ग माना, फिर से वो गौरव लौटाना है, देश का नहीं, गांव का भी नहीं, परिवार का भी नहीं, लेकिन किसका, खुद का। खुद का गौरव लौटाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो परिवार तक भी जाएगा और वो गांव तक भी जाएगा। और गांव तो और भी सहज है, कहते गांव तो सहज होता है, शहर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सब इतने बिजी होते हैं ना, किसी को पता ही नहीं होता है मेरे पड़ोस में कौन रहता है, पता ही नहीं होता है। जबकि गांव में एकता की कितनी महिमा है। तो आप लोग ने जो चुना है और ये जो वर्ग कार्य कर रहा है, खास रूरल विंग जिसे हम ग्राम विकास वर्ग कहते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बात चुनी है कि जहां हम सबको एक कर सकते हैं, जहां हम सबकी भावनाओं को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत देश भावनाओं का देश है। हाँ, विवेक से भी चलना होता है। यहाँ जो नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसमें हमारा विवेक और भावना का बैलेंस हो जाता है। दोनों का संतुलन होने से हम अपनी एनर्जीज को, ऊर्जाओं को, हमारे साधनों को, संसाधनों को ना हम व्यर्थ खर्च करने देंगे और उससे उत्तम से उत्तम रीति से हम कार्य में लगा सकेंगे। तो लास्ट का जो रिजल्ट होगा ना, आप जहां भी होंगे आपका रिजल्ट होगा संतोष, खुशी, प्रफुल्लता, भरपूरता। आपको लगेगा कि मेरा एक एक क्षण बहुत बहुत अमूल्य है। बस इतने ही विचार आपके सामने मैं रखना चाह रही थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चांस देने के लिए। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। ऐसे कहा जाता है कि 3 दिन पूर्व अतिथि बन के आप आए थे, परिचय स्नेह में परिवर्तित हुआ और वह स्नेह संबंध बन चुका है। अब आप अतिथि न रह करके हमारे भाई बन चुके हैं। भाइयों बहनों, कल नई सुबह होगी और वह सुबह शून्य से नहीं, क्योंकि 3 दिन आध्यात्मिकता का अनुभव आपने यहां बैठ करके किया है और वह सुबह आपकी अनुभव वाली सुबह होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि अब सोचना आपको है। भ्राता करुणा भाई जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, बहुत दिल से हम आपका स्वागत सत्कार करते हैं। बहनों से निवेदन करेंगे कि भ्राता जी का सम्मान कीजिए। और भाइयों बहनों, ये 3 दिन जो अनुभव, आध्यात्मिकता का अनुभव आप लेकर के जा रहे हैं, अब क्या करना है, ये कॉट, ये बॉल मैंने पहले भी कहा आपके पास आ चुका है। जमी की कैसी भी वकालत हो, वो फिर नहीं चलती जब आसमां से कोई फैसला आता है। वक्त जब फैसला देता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। इसलिए एक संस्था बन के पधारे हुए आप सब लोग अब ना सिर्फ सोचेंगे लेकिन अपने जीवन में क्या करना है, ये फैसला करने का सिर्फ यही एक पल है। और इसीलिए मैं आमंत्रित करूंगी मुख्य अतिथि भ्राता कमल पटेल जी को, पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार हरदा से आप पधारे हैं। भ्राता जी आइए और अपने दिल के उद्गार हम सब के सामने रखिए। भ्राता कमल पटेल जी।
ओम शांति। परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए पूरे भारत से आए मातृशक्ति और बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। और सनातन कृषि संस्कृति से ग्राम स्वराज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित इन तीन दिवसीय सनातन कृषि संस्कृति शाश्वत योगिक खेती के माध्यम से इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हम सब ने विचार किया। तीन दिन में हमें कई विद्वानों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद और मिला। इस समापन सत्र में मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक बुजुर्ग राजयोगी ब्रह्मा कुमार आदरणीय करुणा भाई जी, आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी जिनका हमको विचार सुनने को मिला, जिससे हमें कई चीज सीखने को मिली जो अपने जीवन में हम अपनाएंगे, ऐसी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी किरणा बहन जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, जिनका हमें तीन दिन से लगातार मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है, ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई जी, और कुशल संचालन करने वाली हमारी बहन ब्रह्मा कुमारी किरण बहन जी, भ्राता डॉक्टर रामधन जाट जी, सम्मानी मंच, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पवित्र परिसर में आने का, या ये कहे स्वर्ग में आने का अवसर मिला। ये पूर्व जन्म के पुण्य है, बुजुर्गों को पुरखों का आशीर्वाद है कि साक्षात धरती के स्वर्ग में हम आए हैं। और जो कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की, बाबा जी ने की कि ये भारत स्वर्णिम भारत बने, हमारी भारत की सनातन संस्कृति ये जियो और जीने दो, पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में हम मानते हैं, और इसलिए हमारी संस्कृति में सिर्फ मनुष्य नहीं, मानव भी नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी पर्वत नदी पहाड़, ये सब ईश्वर की देन है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, और इसलिए हम जिस प्रकार अपने और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उसके विकास के लिए काम करते हैं, अगर उसको कष्ट हो तो उस कष्ट को दूर करने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, स्वयं आगे आते हैं, इसी प्रकार ये विश्व एक पूरा परिवार है। और उसके अंदर जैसे मैंने बताया, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी पर्वत और मानव, सब हम एक परिवार के सदस्य हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है, और इसलिए हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को जो चीजें दी है प्रकृति ने ईश्वर ने उसका हम दोहन करें, लेकिन शोषण ना करें, लेकिन हमारी संस्कृति पर विदेशी शासन होने के कारण कुठाराघात हुआ, और हमारे को बताया गया कि आपके यहां जो है वो अशिक्षित हो पिछड़े हो जो कुछ है पाश्चात्य संस्कृति में है भार बहुत, और इसलिए जब हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश दासता की बेड़ियों से आजाद हुआ, आजादी के बाद अपने ही देश के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी, और ये देश कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण गांव प्रधान देश है, गांव का देश है। महात्मा गांधी जी परम राष्ट्रपिता जी वो भी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद जो सरकारें आई उन्होंने गांव को कृषि को महत्व नहीं दिया, वही पाश्चात्य संस्कृति उद्योग धंधे शहर इस पर ज्यादा ध्यान दिया। और इसलिए जो आजादी के बाद भारत सरकार का बजट होता था विकास का, अगर एक रुपया खर्च होता है तो 80% जनसंख्या उस समय जब आजाद हुआ भारत 47 में गांव में रहती थी, 20% शहर में रहती थी, लेकिन 80% खर्च शहर में होता था बजट का भारत सरकार का, और 20% जहां 80% लोग रहते थे गांव। और इसलिए गांव और शहर की खाई चौड़ी होती गई, शहर विकसित हो गए मुट्ठी भर लेकिन गांव पिछड़ते गए। शहर में बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य शिक्षा सारी सुविधाएं देने का प्रयास सरकारों ने किया लेकिन गांव में न बिजली न पानी न सड़क और न सिंचाई की सुविधा। मैं गांव से आता हूं, किसान का बेटा हूं, हमारे पूर्वज राजस्थान से थे जोधपुर जिले से, लेकिन यहां अकाल पड़ता था इसलिए 200 साल पहले मध्य प्रदेश चले गए, बहुत मेहनत की। लेकिन जिस गांव में बसे, मेरा गांव का नाम है राता तलाई, जो पहले हरदा तहसील थी बाद में वो जिला बना, हंडिया तहसील नर्मदा जी का किनारा, नाभि स्थल है नर्मदा जी का हमारे यहां से 10 किलोमीटर। तो पीने का पानी भी गांव में नहीं था, 12 किलोमीटर कच्ची सड़क से घुटने घुटने कीचड़ में नदी नाले पार करके आना पड़ता था। अगर शहर में पढ़ने जाते थे, रक्षाबंधन पर घर राखी बनाने आते थे बहन से, तो घुटने घुटने कीचड़ में नदी नाले पार करके कहीं घोड़े पे बैठ के जान जोखिम में डालकर लालटेन में पढ़ते थे गांव में जब पढ़ते थे छोटे थे। और पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे, गांव में पानी नहीं था। और गर्मी की छुट्टियों में जब हम घर जाते थे और जब पानी से सुबह उठकर नहाना धोना होता तो पहले माता जी बोलती बेटा एक लोटा पानी इसी से मुंह धोना। मैंने कहा क्यों छोटे थे, तो बोले अपने गांव में पानी अपने 4 बैल 2 गाड़ियां कोठियां वहां से आती 4 किलोमीटर दूर से, उसलिए पानी का बहुत संकट है। उसके बाद में जब स्नान करते थे तो गांव में कोल्होए का कढ़ा होता था हमारे यहां, क्योंकि हमारे यहां गाय बैल भैंस बहुत होती थी, 100-100 गाय बैल भैंस थी, तो दूध देने वाली गाय भैंस होती थी उनको घर में रखते थे, बाकी को नर्मदा किनारे छोड़े आते थे। और उस पानी की पटिया रखते थे उसके ऊपर, उस पर बैठ के स्नान करते थे घर वाले सब मिलके, और वो जो पानी बचता था वो मवेशियों को दूध देने वाली गाय भैंस से उसको पिलाते थे, बछड़ों को पिलाते थे, बच्चों को पिलाते। ऐसे संकट वाले गांव में मेरा जन्म हुआ और इसलिए सरकार के खिलाफ बचपन से ही एक आक्रोश रहता था कि गांव वाले का जीवन इंसान नहीं है क्या, गांव में शहर में इंसान रहते हैं क्या, सब विकास शहर में होता है गांव में क्यों नहीं होता है। और इसलिए है प्रभु इतना सक्षम बना दे कि मैं अपने गांव की समस्या का निराकरण कर सकूं। और प्रभु की कृपा हुई गांव ही नहीं प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला। और हम आज गर्व से कह सकते हैं कि जहां पहले 20% गांव पर खर्च होता था, प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तब उन्होंने जो भारत सरकार का बजट था उसको परिवर्तित किया। और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने उस समय गांव में लगभग 62% लोग रहते थे, 28% शहर में आ गए गांव से पलायन करके। और इसलिए उन्होंने कहा कि विकास का पहिया जो उल्टा घूम रहा है इसको सीधा कीजिए, और निर्देश देकर और बजट लाए उसमें 68% गांव पर और 32% शहर पर खर्च करना शुरू किया। और उसके बाद गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फसल बीमा योजना, किसान फसल बीमा, इसके पहले कभी फसल बीमा, आवास योजना मोदी जी लेके आए। और इसलिए अब गांव के अंदर बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा सब है। जब मैं पहली बार 1993 में विधायक बना तो जनता के अंदर विधायकों के जन नेताओं के प्रति एक अविश्वास रहता था कि चुनाव के पहले सब आते हैं, बाद में कोई आता नहीं है। मुझे भी जब मैं चुनाव प्रचार में गया तो हर आदमी कहता है भैया आपको देंगे, आपने हमारे किसानों के लिए ये किया वो किया इसलिए जिताएंगे, लेकिन चुनाव के बाद आना। अब मैं विधायक बन गया तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी कि जनता का दिल और विश्वास कैसे जीतें। तो प्रभु ने मुझे कुछ ज्ञान दिया कि पद यात्रा करना चाहिए। पैदल जाने से जनता से जुड़ेंगे, गरीब से जुड़ेंगे, बच्चे से जुड़ेंगे, माता बहनों से जुड़ेंगे, मजदूर से जुड़ेंगे, किसान से, और गांव की समस्याओं का भी पता चलेगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत पुराना गुप्तेश्वर मंदिर है चारवा में, वहां से पूजा प्रार्थना आशीर्वाद लेके हमने यात्रा शुरू की पैदल, और एक नदी पार करके एक शोभापुर गांव में वहां गए तो गांव वालों ने बड़े जोरदार स्वागत किया, पूरे गांव के लोग आए साथ में, और एक पलंग बिछाया रोड के ऊपर, गोया होता गांव के अंदर पूरा इकट्ठे हुए थे, और दो बुजुर्ग आके मेरे आजू बाजू बैठ गए और मेरे हाथ दबाने लगे। तो मैं उस समय 32 साल की था, तो मैंने कहा बाबा अब मुझे हाथ दबाऊं, थका थोड़ी 3 किलोमीटर तो हुआ अभी आया हूं। बोले नहीं बेटा हम दबा नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि जिंदा विधायक कैसा होता है, पहली बार हमारे गांव में कोई विधायक आया इसलिए हाथ लगा के देख रहे हैं, हमको बड़ा सुख मिलता है। ये हकीकत सत्य घटना समाचार पे, मीडिया भी मेरे साथ था, समाचार पत्रों में खूब चलता, क्योंकि उसके पहले गांव में लोग चुनाव के पहले आते थे, बाद में कोई आते नहीं थे। पूरे क्षेत्र की पदयात्रा की थी, उस समय 4 मुद्दे हमने रखे थे। पहला हरदा तहसील थी उसको जिला बनाना, दूसरा गांव में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं थी, क्योंकि मैं गांव से आता था, मेरा गांव तो 24 किलोमीटर दूर था हरदा शहर से, 12 किलोमीटर तो कच्चे में जाना पड़ता था, तो पंचायत मुख्यालय तक कम से कम सड़क बन जाए। तीसरा हमारे यहां तवा नहर है, तवा डैम में होशंगाबाद जिला था, तो हरदा तक तो पानी आता था, लेकिन खिड़किया ब्लॉक पूरा असिंचित था, आधा एरिया असिंचित था, 50% में ही 50% में सिंचाई होती थी, और दोनों की तुलना अलग अलग दिखती थी। उस क्षेत्र में जब जाते थे तो वो कहते थे हमको नहर चाहिए, तो हमने कहा तवा नहर का पानी खिड़किया क्षेत्र में पहुंचाएंगे। और चौथा था भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, न खाएंगे न खाने देंगे। इन 4 मुद्दों को लेकर हमने यात्रा की और लगभग 1 महीने में पूरे एक एक गांव, लगभग जो गांव थोड़े वो छूट गए थे तो वो दूसरे गांव में जाते थे, लेकिन उससे जनता से जुड़ाव हुआ, गांव की समस्या पता लगी, और आज इस मंच के माध्यम से हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सड़क नहीं है, बल्कि चौकड़ी बना दी चारों तरफ, किधर से भी जाओ, जो सपना था कि जिधर जाएंगे सड़क से चलेंगे, तो आज सड़कों का जाल बिछा है। 100% सिंचित जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला हरदा बना है। खिड़किया तहसील भी सिंचाई हो गई है, तवा डैम से, नर्मदा जी से। 2024 के बाद मध्य प्रदेश गुजरात सरकार का करार था कि उसमें कोई नर्मदा से पानी नहीं ले सकते, इसलिए 2024 के पहले ही उसको पूरा कराया। और प्रशासन भी ईमानदार प्रशासन देने का प्रयास किया, और उसके कारण आज हरदा जिला कृषि के क्षेत्र में गर्व से कह सकते हैं कि गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टर लगभग 7-8 साल से नर्मदापुरम, यानी जो नाम हो गया उसका होशंगाबाद जिला था, और हरदा जिला हमारे किसान बैठे हैं नर्मदापुरम के, प्रति हेक्टर पहले नंबर पे, चना उत्पादन में भी हम पहले नंबर पे। और कोरोना के समय पूरी दुनिया जब ठप हो गई लॉकडाउन में, उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कारपोरेट, सब पूरा जाम हो गया, घर के अंदर कैद हो गए, सिर्फ ईश्वर की कृपा से एक ही क्षेत्र था, वो था गांव और कृषि, किसान, जहां कोई कोरोना नहीं था और किसान अपने खेत में पसीना बहा रहा था, मजदूर मेहनत कर रहा था और इतना अनाज पैदा किया कि पूरी दुनिया को भूखे नहीं मरने दिया। कल्पना करें कि जैसे उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद था लॉकडाउन, अगर गांव और कृषि भी बंद होती तो दोनों टाइम का भोजन कहां से मिलता, और भोजन नहीं मिलता तो हम जीवित कैसे रहते। और इसलिए किसान का बेटा होने के कारण एक जन्म नहीं 1000 जन्म मिले तो किसान क्या मिले, ये हम गर्व से कह सकते हैं। क्योंकि किसान अन्नदाता भी है और जीवनदाता भी है। और भारत को अगर स्वर्णिम राष्ट्र बनाना है, भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचाना है, दो हाथ को कोई काम दे सकता है तो वो कृषि दे सकती है। बेरोजगारी अगर दूर कर सकती तो कृषि कर सकती है, लेकिन उसके लिए नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। 23 अप्रैल 2020 पंचायत राज दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की कि यह देश गांव और शहर से मिलकर बना है, लेकिन गांव का देश कहलाता है, लेकिन गांव में जो हमारे मकान है, जो गांव आबादी में बसता है, कई जगह लालडोरा कहलाता है, दिल्ली भी पूरा दिल्ली जो है गांव से ही बसा हुआ है, लेकिन उसको मालिकाना हक नहीं है। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के समय से रहते आ रहे हैं, जबकि कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर कब्जा कर ले और 12 साल तक किराएदारी रहने लग जाए तो कोर्ट और कानून उसको कह देता कि ये मालिक है, लेकिन जो हमारे पुरखे कई वर्षों से हम रहते आए हैं, जिसमें हम जन्मे रहते हैं, लेकिन अगर कोई यहां से हाईवे निकल जाए और सरकार के अधिकारी आके बोले कि ये मकान आपका रोड में आ गया है, यहां से हाईवे निकलेगा, हम आपको तोड़ेंगे हटिए, तो आप कहेंगे हमारे तो जन्म ही यही हुआ, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के समय, आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में कानून भी कहेगा कागज बताइए, कोई कागज नहीं। और इसलिए गांव के लोगों को सिर्फ खेती करने और मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया, उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते। बैंक उसको एक रुपया लोन नहीं देती, भले गांव में आपका 1 करोड़ का मकान है, आपकी 5,000 की जमानत नहीं हो सकती, 5,000 का लोन नहीं मिल सकता, लिमिट नहीं बन सकती, सॉल्वेंसी नहीं बन सकती। वहीं शहर में अगर आप झोपड़ी में भी रहते हैं और आपके नाम पे है तो आपको कोर्ट से जमानत लोन लिमिट सब मिल जाएगी। और इसलिए बैंक से जब ऋण लिया तो सब्सिडी भी मिलती है सरकार की, उस योजना का लाभ लेकर मुट्ठी भर शहर के लोग अरबपति खरबपति बन गए और हमारे गांव पिछड़ गए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी जी को कि उन्होंने स्वामित्व योजना लाकर अब गांव की जो मकान है, जो वर्षों से हम आबादी में रहते आए, करोड़ों लोग उनको मालिकाना हक मिलेगा। ड्रोन से सर्वे हो रहा है, हमारा हरदा जिला देश का पहला जिला बना है जो 100% लोगों को मालिकाना हक दिया। उसके जो लाभ होंगे वो लाभ ये होगा, लोन मिल जाएगा, कोर्ट से जमानत हो सकती है, लिमिट मिलेगी, सॉल्वेंसी। तो अब गांव का किसान का बेटा जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा नौकरी के लिए, एक बेटा खेती करेगा, दूसरा बेटा उद्योग लगाएगा, तीसरा उसको व्यापार व्यवसाय भी कर सकेगा और एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो गांव के और गांव के अंदर जब उद्योग लगेंगे, मैं किसानों में गेहूं पैदा करता हूं, मैं किसानों में दालें पैदा करता हूं, हमने कोरोना के समय तवा डैम का पानी छुड़वा दिया गर्मी में और उसके कारण 2 लाख हेक्टेयर में मूंग हुआ, 2 लाख टन, और उसके कारण पिछले 5 साल से 10,000 करोड़ की फसल सिर्फ मूंग की 2 महीने में 60 दिन में हरदा और नर्मदापुरम जिले में हुई है, और एमएसपी पे उसकी खरीदी करवाने के कारण किसान की आय 2 गुना बढ़ी है। किसान आत्मनिर्भर बना है और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश और आत्मनिर्भर होगा, स्वर्णिम उसमें जाएगा। कहने का आशय यह है कि जो योजनाएं हैं सरकार की, इनका लाभ लेते हुए और हम जो पेस्टिसाइड पर रासायनिक खाद पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो किसान का पूरा पैसा उसी में चला जाता है और किसान कर्ज में आत्महत्या करता है। और इसलिए किसान आत्महत्या ना करे, खेती घाटे का धंधा ना हो, लाभ का धंधा बने, उसके लिए एक ही उपाय है, वो है हमारी प्राकृतिक खेती, शाश्वत यौगिक खेती। अगर वो हमने अपनाया तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए सरकार का भी जाता सब्सिडी में विदेशों में, वो नहीं जाएगा, हमारी गऊ का पालन हो जाएगा, गौवंश का पालन होगा, गोबर से खाद गौमू से दवाई जितना बताया गया हमको 3 दिन में, इसके माध्यम से हम खेती करेंगे तो लागत भी कम आएगी, हमारी जमीन भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा और जीवन भी बचेगा। मैं कृषि मंत्री था, राज्यपाल महोदय कार्यक्रम में आई थी, हम लोग गए थे किसान सम्मेलन में और मैंने मंच से कह दिया कि हम किसान जहर पैदा कर रहे हैं, हम खुद जहर खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं और अपने समाज और देश दुनिया को खिला रहे हैं, ये इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो मीडिया ने उसको बहुत नेगेटिव उसमें लिया, फिर मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि मैं पहले किसान हूं बाद में मंत्री हूं। मैं खुद अब मूंग की फसल हमने बहुत कर दी, बहुत खुश हुए, लेकिन रात को सोचते हैं सोते समय तो कहते हैं कहीं पाप तो नहीं कर दिया, पांच पांच कोरोजिन डालते हैं। पहले मूंग बीमार आदमी को देते तो स्वस्थ हो जाता था, और स्वस्थ को खिला दो तो बीमार हो जाए। और इसलिए आज की आवश्यकता है, अगर जीवन बचाना है, पर्यावरण बचाना है, खेती बचाना है, मिट्टी बचाना है, देश को बचाना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर आना ही पड़ेगा। और इसलिए हमने ब्रह्म कुमारी भैया भ्राता और बहनों के साथ हरदा में कार्यक्रम हाथ में लिया है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। अगर हमने गांव वालों हमने शुरू किया है, अभी हमने मूंग की फसल एक छोटे से उसमें शुरू किया, लेकिन आगे चल के हम उसको बड़े पैमाने पर ले जाएंगे और गांव गांव उसका प्रचार करेंगे, और किसानों को ब्रह्म कुमारी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रशिक्षण देकर और तैयार करके प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएंगे, पहले अपने गांव को, फिर अपने तहसील जिले को, और फिर प्रदेश को, और पूरे देश को, तो निश्चित रूप से हमारा गांव तीर्थ बन जाएगा, हमारा देश तीर्थ बन जाएगा, और जी और जीने दो की जो संस्कृति है उसको हम अपनाकर पूरी दुनिया को सुख शांति अमन चैन दे सकते हैं। और भारत के लिए तो यह अवसर है कोरोना के बाद कि पूरी दुनिया अब स्वास्थ्य के प्रति जागृत हुई है, क्योंकि कोरोना में पैसा काम नहीं आया, और इसलिए शुद्ध अनाज, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध दूध, शुद्ध चीजें, कपड़े भी पहनने के लिए शुद्ध चाहिए, और वो चाहिए प्राकृतिक, जैविक, जिसको रजिस्ट्रेशन होता है जैविक का, ऑर्गेनिक का, और वो भारत के लिए अवसर है, क्योंकि हमें ईश्वर ने वो देन दी है देसी गाय, उसके माध्यम से हम खेती करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को हम खाद्यान्न और सब्जियां पहुंचा सकते हैं, और भारत माता को पुनः सोने की चिड़िया बनाकर स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको ये बुद्धि और शक्ति दे कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाकर भारत को स्वर्णिम भारत बनाए। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ, वो यादें ही क्या जो छाऊं छाऊं चली। आप सबका अनुभव आज हम सबके सामने आ चुका है, तब फिर एक बार मैं आपसे कहूंगी कि अब सोचने का समय आ चुका है। विकसित भारत सीना तान करके विश्व के आगे खड़ा है। जब जब कोई महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करनी होती है तब घर में भी समझदार बेटों को बुलाया जाता है। परमात्मा ने भी ऐसे भारतवर्ष के समझदार बेटों को आज अपने घर में बुलाया है। इसलिए हे भारत वर्ष के कार्यकर्ताओं, महानुभावों, अब मैं अतिथि आपको नहीं कहूंगी, क्योंकि परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ चुकी है। तो इस महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके सामने कहते से पूर्व सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको ब्रह्मा कुमार बनाने का हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान हमने जाना है, माना है, और उसकी सफलता को कदम कदम पे महसूस किया है, उससे हम दृढ़ निश्चय से कह सकते हैं कि इसी आध्यात्मिकता की शक्ति के द्वारा पुनः भारत स्वर्णिम बन पाएगा। इसलिए ना आपको ब्रह्मा कुमार बनाना है, लेकिन आध्यात्मिकता की शक्ति का जो परिचय हम सब ने किया है, हम आपको अपना भाई समझते हैं, इसलिए वो बताना जरूर चाहते हैं, और वो हमने पूर्ण कर चुके हैं। अब समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं भ्राता रामधन जाट जी को आमंत्रित करूंगी, हेड रिलायंस फाउंडेशन बूंदी से आप पधारे हैं। एग्रीकल्चर में आपने पीएचडी किया हुआ है, कनाडा से आपने सर्टिफिकेट कोर्स मार्केटिंग में किया है, और पिछले 20 साल का अनुभव आपके पास है। भ्राता जी आइए, अपनी बात रखिए।
ओम शांति। 10 मिनट का समय दिया गया है। सम्मानित मंच, और 20 साल में अगर पिछले 2 साल को मैं जोड़ दूं तो मैं धन्यवाद करता हूं ब्रह्मा कुमारी संस्थान और जिन दीदियों ने खेती बाड़ी का काम करते आ रहे हैं, जन्म से ही खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और परमपिता का आशीर्वाद रहा कि हम नौकरी भी वैसे ही मिली कि खेती और किसानों को खेत तक काम करने का जो है अवसर मिला और उससे बहुत सारे किसानों के जो है जिंदगी में परिवर्तन भी आए और वो अकेले से संभव नहीं है। कहा जाता है कि रास्ता जब छोटा होता है तो अकेले तय कर सकते हैं लेकिन लक्ष्य लंबा होता है तो उसके लिए टीम चाहिए। तो ये जो टीम सामने बैठी है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मैं याद करूंगा गीता दीदी, रजनी दीदी जो बूंदी से हैं, चंद्रेश भाई जी, और सामने बैठे हैं मेरे आदर्श और जिनके मार्गदर्शन जो काम कर रहे हैं डॉक्टर एनएल मीणा जी, डीन है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के, डॉक्टर हरीश वर्मा जी जो केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और मौर्या जी हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वेजिटेबल बूंदी का जो एकमात्र संस्थान है राजस्थान का, वहां से बहुत सारी चीजें सीखी और उनको जब लेके गए मेरा कहना यही था कि हम एक चीज ध्यान ले जो शाश्वत योग्य खेती है, सबसे पहले गणित क्या है उसका, बही खाता क्या है। जैसे दीदियां सिखाती है कि परमात्मा के पास सबका बही खाता रहता है पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का, तो वैसे ही खाता हमें खेती का बनाना पड़ेगा पहले। और हम बनाया है कि जहर डालने से, क्या डालने से, जहर डालने से और बेचने से कितना मुनाफा आ रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं आपके पास भी खुद की तनख्वाह का खाता भी नहीं होगा कि मैं कितना कमाता हूं और कहां खर्च होता है। जब हिसाब किताब होता है तो हमारा ध्यान जाता है। हमने निकाला किसान का कि इतना जहर ला रहा हूं, इतना खर्च कर दिया, इतना बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो ठीक है नहीं बचा तो जहर डाल के 10 क्विंटल आ रही है, अगर जहर नहीं डालेंगे 7 क्विंटल आ जाएगी, हिसाब किताब तो बराबर ही है, हुआ कि नहीं हुआ। और ये सत्य है क्योंकि हम हिसाब किताब जो है लगाते नहीं है। तो पहला हिसाब किताब लगाएं, दूसरा कि जो मानवीय मूल्य यहां सिखाते हैं बिहेवियरल चेंज, देश के साइंटिस्ट, देश के वैज्ञानिक और जो हम सब बैठे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि सब लोग किसान के खेत में काम करेंगे। मेरे पास खेत है तो मैं काम करूं उसमें, खेत नहीं है तो हमने आदर्श वाटिका देखी कि कम से कम मैं तो बाजार से जहर ला के नहीं खाऊं। करोड़ रुपए कमा के आदमी सब्जी के ठेले पे खड़ा होता है, ऑर्डर करता कार में बैठे बैठे और घर में युगल को जो है जहर ले जाके दे रहा है। क्या ले जाके दे रहा है, कभी सोचा आप लोगों ने, आप बच्चों को जहर खिला रहे हैं। जब ये सोच हमारे दिमाग में आएगा सबसे पहले कि मैं मेरे बच्चों को जहर खिला रहा हूं, एक एक सोच और बदलिए। कोई भी दवाई आप क्या बोलते हैं, अभी खेतीबाड़ी में किसान क्या बोलता है, मैं दवाई लेके जा रहा हूं, आप ये सिखाइए कि दुकान वाले को बोले कि जहर दे दीजिए, क्या बोलेंगे, बदल जाएगा, सोचेगा, दिमाग में घंटी बजेगी कि मैं जहर किसके लेके जा रहा हूं। एक मां हो जो जन्म दिया हो, दूसरी मां जो हमारा पालन पोषण कर रही है। कितने लोग मानते हैं कि धरती माता जिंदा है या मृत है, आप में से, धरती माता जिंदा है ना, तो कभी हमने सोचा है कि हम जहर खिला रहे हैं। विषय जो है जो मुहिम ली है बिल्कुल भी असंभव नहीं है, किसानों के साथ किए हैं और किसान खुद अनुभव कर रहे हैं। किसानों के साथ बैठिए जाके, क्या आप में जो भी बैठे हैं भले गांव से नहीं आए, क्या आप एक किसान गोद ले सकते हैं, कितने किसान एक किसान को गोद ले सकते, हाथ खड़े करिए जो बैठे हुए हैं। ये ही कारण है पीछे रहने का। मार्केटिंग भी हमारे पास में है, हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, बोलो कम अपनाओ ज्यादा, ये दीदियां सिखाती हैं, ये हमने अनुभव किया है। मैं चंद्रेश भाई जी को बोल रहा था, राजू भाई जी चर्चा कर रहे थे, सरला दीदी जी कितना किया, तो हमें आज ठान के जाना है कि एक किसान के, और एक और कह दूं मैं आपको, छोटा किसान 25% जहर डाल रहा है, बड़ा किसान 50-60% डाल रहा है। क्यों? उनके पास गाय भैंसे कम है, उतना गोबर धन नहीं है, पशुपालन कम हो गया है, खेती घाटे का सौदा हो रहा है। आपको पता है, सबसे चिंता का विषय यह है, जिस प्रकार से आप माइग्रेशन देख रहे हो, जिस प्रकार से किसी शहर में जाके खड़े होना, बसें भर के मजदूरी के लिए आती हैं, मैंने देखा है, बसें भर भर के, कोई खेती नहीं करना चाहता। मैं जरूर खेती करता, हम 7 भाई बहन हैं, 2 बीघा जमीन है, क्या हमारा जिंदगी चलता उसमें? लेकिन नहीं है, नौकरी भी ऐसी चुनी, सेवा भी ऐसी चुनी कि किसानों का भला भी कर पाए और जो है घर में बाल बच्चों के पोषण के लिए कुछ आमदनी भी हो जाए। अच्छे कर्म किए हैं जो आप सब लोग बैठे हैं, उन कर्मों की वजह से जो है कुछ भाइयों को नींद भी आ रही है ना। एक ट्राइबल्स की बात कर रही थी दीदी, काम करते हैं ना, वहां एक जो है गाना है, जाग जाग मेरा कृष्ण भाई किम हूं तो निद्रा में, नींद से जगाने के लिए इस संस्थान में जो सोते हैं उनकी नींद भी दीदी 5 बजे खुल जाती है। और मुझे पक्का विश्वास है, अगर हम यहां ठान के जाएंगे कि हमारे साथ उमंग और उत्साह, अगर जिंदा है, तो अब बताओ कितने किसानों को गोद लेंगे आप? अभी भी 2 हाथ ही खड़े हो रहे हैं। कर लो, बिना मन के कर लो, परमात्मा शक्ति देगा, कम से कम वो असलियत में कन्वर्ट हो जाएगी। हिम्मत तो करिए, दीदी मैं बता रहा हूं, मैं खुद ऑर्गेनिक खेती होती है, 5,000 रुपए क्विंटल में गेहूं लेके जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां किसान उगाते हैं, खेत से खरीद के लेके आते हैं। हर कोई किसान शाश्वत योग्य खेती करना चाहता है, राजू भाई जी सलाह दे दीजिए, हर कोई किसान, बस यह है कि उनको अपनाने वाला हो जाए, उनको शिक्षा देने वाला हो जाए। हर किसान, कोई नहीं अपनी धरती मां में जहर डालना चाहता। इतिहास सामने है, सामने कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, पूछ लीजिए, अधिकारियों के किसान लठ मारते थे जब हवाई जहाज से यूरिया डीएपी डाला जाता था खेत में, सही कर रहा हूं सर? लेकिन उस टाइम जरूरत थी देश को, तो जरूरत के हिसाब से परिस्थितियां बदली, लेकिन आज हमारे पास उतना है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक किसान को गोद लेके जितना उसकी जोखिमिक क्षमता सहन कर सकता है, आप आधा बीघा जमीन लीजिए उसकी, 1 बीघा जमीन लीजिए और उसके साथ बैठिए कि भाई शाश्वत योग्य खेती कर, इसमें जो भी पैदा होगा खरीदार हम होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब लक्ष्य होता है तो लक्षण आने लगते हैं, जब लक्ष्य होता है तो लक्षण आने लगते हैं, जब लक्ष्य ही नहीं होगा हमारा लक्षण कहां से आएंगे? अगर 3 दिन में बैठ के उस शाश्वत योग्य खेती की बात हो रही है और 400 लोगों में से अगर 4 लोगों के हाथ खड़े होते हैं, तो हिसाब किताब तो होना है, पक्का है। कुछ हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म थे जिनकी वजह से आज हम यहां हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो हमारे बच्चों को मिलेगा। इसलिए बाबा ने सही जगह भेजा है, कि सत्व प्रधान बनते हैं, हर काम को सेवा समझ के करते हैं। गांव में बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। वैसा ही संबंध किसानों के साथ में, श्याम भाई जी थे जहां होता, मैं तो मेरे साथ में बीके शर्मा जी हैं, सर्व मंगल संस्थान से बैठे हैं, कभी उठते हैं दीदी 5 बजे उठ के बोलते हैं, मेरे को पूछते हैं कौन है, मैं कह लेखराज दादा थे, ध्यान मगन, आज इतना विजन, 140 कंट्री और इतना व्यवस्थित काम, आपको कहीं आईआईएम जाने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में अगर आपने सही सोचा होगा तो। आईआईएम में क्या सिखाते हैं, हाउ टू यू परफॉर्म इन द प्रेशर, तो हमारे पास तो कोई प्रेशर है नहीं, हमें तो खेती करनी है, वही खेती करनी है जो हमारे पूर्वज करते थे। तो इतना बड़ा साम्राज्य हो सकता है, एक एक चीज देखिए आपने, चाय की जगह चाय, नाश्ता की जगह नाश्ता, दीदियां काम कर रही है, 3 बजे उठती हैं, पूरा मेहनत करती है, योग है, मेडिटेशन है, फिर और बाकी सेवाओं में लग जाता है, दिस इज अ मिरेकल। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशंस, कौन बोलता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन कुछ नहीं होता, मेरी मां आज भी नजर उतारती हैं, उतारती है ना नजर बच्चे की, रो रहा बच्चा नजर उतार दो, कि 4 काले मिर्च और मिर्ची वो एक माध्यम है, लेकिन उन 7 मिर्ची या 7 काले मिर्च के साथ में उनका पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। हाँ, तो मेरा ये कहना है, इसके लिए एक किसान का कुछ एरिया गोद लेने का संकल्प लें, और मैं बूंदी में जाके जो है, जो हमारे सहयोगी बैठे हैं सामने, 500 किसानों का गोद लेंगे, 500 किसानों के साथ में जलवायु अनुकूल शाश्वत योग्य खेती उसका प्रयोग भी करेंगे, बाकी किसान आएंगे सीखेंगे, और जब उसके अंदर अच्छा लगेगा तो धीरे 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 वो चीजें फैलेगी। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है परमपिता परमेश्वर से कि वो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे और सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। सिर्फ एक शब्द में ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये माइक मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है, उसी तरह से एक हम इंस्ट्रूमेंट है यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहने, ये तो परमात्मा का काम है, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, और इसीलिए सुचारू रूप से चलता है क्योंकि चलाने वाला परमात्मा है, हमारा शिक्षक परमात्मा है, हमारा माता पिता परमात्मा है, हमारा गुरु परमात्मा है, यहाँ कोई गुरु संत आदि नहीं है, सब मार्गदर्शक स्वयं परमात्मा से प्राप्त होता है, और उन्हीं का पद चिन्हों पे ये विश्वविद्यालय कदम कदम पे चलता है, और इसीलिए कदम कदम पे सफलता प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगी, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की वेबसाइट का लॉन्चिंग आप सबके सन्मुख आदरणीय सरला दीदी जी, भ्राता राजू भाई जी और परम वंदनीय करुणा भाई जी की उपस्थिति में और आप सबकी उपस्थिति में हो रहा है, bkruralwing.org। करतल ध्वनि से आप सब देखेंगे इस वेबसाइट को। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार करतल ध्वनि से इस वेबसाइट के लॉन्चिंग को हम बधाई देंगे। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ परम वंदनीय आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी को, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू। ये खंडेर दिखने वाले व्यक्तित्व इतनी बुलंदियों को अपने में समाये हुए हैं कि उनका परिचय मैं आपको क्या दूं? आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी सेवाएं दिन रात अविरत चलती है, आध्यात्म जगत का आप आसमा हो, ये आपकी विनम्रता है कि आप सर को झुका करके चलते हैं। जब जब आपने घर में ब्रह्मा कुमारी चैनलों को देखा होगा जिसके पीछे आपका रात दिन लगा हुआ है, तो मैं ऐसे भ्राताजी से निवेदन करूंगी कि आप इस समापन सत्र के अध्यक्ष महोदय हैं, भ्राताजी पधारिए और हम सबको आशीर्वाद से लाभान्वित कीजिए। परम आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी।
सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे साथी जो स्टेज पे बैठे हैं उनको वंदना करते हुए, आप सभी भाई बहने इस कार्यक्रम में आए हैं तो मुझे अत्यंत हर्ष है, तो आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। इसीलिए क्योंकि मेरा खुद का परिचय शायद हमारे भाई बहने भी नहीं जानते होंगे, मैं एक बहुत छोटा सा एक गांव में पैदा हुआ और जो जहां कृषि से ही हम लोग पूरे अपने जिंदगी वहां बिताते रहे। हमारे पिताश्री है या नाना जी है, सब हमारा जीवन का वही एक ये था। परंतु हमारे लौकिक हमारे पिताजी वो टीचर थे, तो उस समय पर भारत में औद्योगिक क्रांति का भी चल रहा था, तो उस समय पर उन्होंने सोचा कि बच्चे को इंजीनियर बनाया जाए तो हमको शहर में भेजा। परंतु 16 साल तक खेती करने की सब कुछ काम मैं गांव में करता रहा, तो और उसके बाद शहर में जाके इंजीनियरिंग का शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आया, तो जिसमें मुझे सबसे पहले मेरा परिचय मिला। तो जैसे मैं आपको अपने बंधु यहां आए हैं तो मुझे खुशी हो रही है, तो वैसे उन्होंने एक परिचय मुझे दिया। वहां बेंगलुरु में था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स में मैं डिजाइन इंजीनियर था, तो मैं सबको खुशी खुशी से उस समय पर हमारा देश औद्योगिक क्रांति में था, तो एक इंजीनियर बन के एक बहुत बड़ा देश का फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो अपना परिचय यही देता था। तो मैं गांव से आया हूं नहीं, मुझे आज यहां बताने में आपके सामने खुशी हो रही है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो शहर का जो रंग जो है वो मुझे 18-20 साल के बाद ही हमने देखा शहर क्या होता है। तो बहन जी ने भी बताया कि भाई शहर में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ये है, तो जो बिल्कुल ही हमारे मानव संस्कृति के लिए नहीं होना चाहिए वो सब शहर में ही मिलती है। तो जैसे कहा कि भाई गांव में कैसे एकता होती थी और एक दो के लिए प्यार होता था, शाम को सब आपस में मिलते थे, तो वो दिन भी हमने देखी थी। तो यहां आकर के जो हमको परिचय मिला, तो हम जो भी है इस सृष्टि में, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी पोस्ट के है, जो मैं कहने वाले हम सब जो है, तो एक दिन कहते हैं कि ये मुर्दा घाट में किसको ले जा रहे हैं, तो कहते हैं हमारा डॉक्टर गए, इंजीनियर गए, ये तो थे कौन, किसको हम अभी तक एक दो को पहचानते थे, तो उनको कहते हैं वो तो गए, शरीर है पर वो गए, ऐसे कहते हैं। क्यों? वो एक चेतना थी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, देख रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, तो वो चेतना है। तो वो परिचय जब हमको मिला तो क्या हम गांव में रहने वाले चेतना नहीं है, सिर्फ शहर में रहने वाले हैं? या भगवा पहनकर साधु संत हम बन जाते हैं, प्रवचन दूसरों को देते हैं? तो क्या अभी नेक्स्ट हमारा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, लगभग 1000 ऐसे संत महात्माएं आ रहे हैं, 200 महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं, अभी तक हमको तो समाचार मिला है। तो क्या वही है? नहीं, हमारा सौभाग्य है जो आज सारे देश को खिलाते हैं कि हमारे भ्राता जी ने बताया कि भाई भारत इतनी शक्ति है जो हम सारे विश्व को खिला सकते हैं, कि इतनी साधना हमारे पास है जो हमको प्रॉपर गाइडेंस मिले और हम फार्मर्स को अपनाकर उनको थोड़ा सा ये शिक्षा हम दे सके। हो गया है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं इंडिया में, अब लोगों को यौगिक खेती के बारे में बहुत कुछ अवेयरनेस आ गया है, जो इस समय पर जो भी कुछ आप अपने खेती में कर सकते हैं तो उसके लिए मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दूसरा भाई, शरीर का भाई, वो यही काम कर रहे हैं सारे भारतवर्ष में, तो कर्नाटक से यौगिक खेती का प्रचार करके 1000 फार्मर्स द्वारा उसको सारे इंडिया में भेज रहे हैं। तो मुझे अत्यंत हर्ष है कि भगवान ने आप सबको यहां तक लाए हैं और आप द्वारा भी ये जो शिक्षा है तो सारे भारतवर्ष में प्रचार माध्यम द्वारा हम लोग कर सकेंगे। जैसे कोई ये न कहे कि भाई हम आज जानते हुए भी हम वही खा रहे हैं, तो वो हमको आगे कभी होना, हमारे जो पीढ़ी है वो आगे ये नहीं कहे, तो मुझे खुशी होगी कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय सभी को ये नॉलेज दे रहे हैं कि चाहे गांव वाले हैं, चाहे शहर वाले हैं, या चाहे दो देश विदेश के हैं, वो सब ईश्वर के हैं, तो हम सब उनके संतान हैं। तो हम गांव वाले हैं, हम ऐसा अपने को कभी भी इस प्रकार का नहीं समझे। आपको एक नई चेतना इन्होंने दिए है, हम सब सर्वशक्तिवान ईश्वर के हम संतान है, ये परिचय हमको मिला है, ऐसा मैं आशा करता हूं। दूसरी बात, जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के पास गया था तो उनको मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम ईश्वर को याद करते हैं। मैंने पूछा कौन सा ईश्वर को, कौन से भगवान को, कौन सी देवता को, तो उन्होंने मुस्कुराया। तो मैंने कहा क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हुई? तो हाँ, उन्होंने बोला आपने हमको तो बताया कि भाई आपने गीता पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, जब हम खेती के बाद 3 मास हमको फ्री मिलता है गांव में, हम सब शाम को रामायण महाभारत आदि हम लोग हर साल पढ़ते थे, परंतु आपको ये नहीं मालूम है कि ईश्वर एक ही होता है। ये ज्ञान तो हम सबको है, आज हमारे सब बच्चों को भी है कि विश्व जो है वो एक ही है, और आजकल साइंस भी ये कहते हैं कि भाई अरे ये तो ग्लोबल नहीं, ये ग्लोबल विलेज है, मतलब यहां से बैठ के फोन करके अमेरिका के एक सेकंड में बात करते हैं, हर प्रकार की कम्युनिकेशन है, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है। तो इसीलिए हमको जो दूसरी बात यह समझ में आई है, जो ईश्वर अमेरिका को चलाता है, रशिया को चलाते हैं, अन्य देशों को चलाते हैं, तो हमारी बहनें कभी कभी कहते हैं, ब्रिटिश राज्य में कहते थे वो लोग, हमारे राज्य में सूरज डूबता नहीं है, सदा ही रहता है। तो इसी प्रकार तो हमने जब ये कहा कि हम लोग सभी एक ग्लोब में है, और यहां हमको ये भी मालूम हुआ इस सारे पृथ्वी के सृष्टि के एक ही ईश्वर है। हाँ हाँ, आप गांव में जाइए, आप कैसे हैं, कहेंगे ऊपर वाले की दया, बट शहर में जाके पूछिए आप, वो कुछ और कहेगा। ये नहीं कहेगा कोई कि भाई हम ईश्वर की कृपा से हम जी रहे हैं। तो आप बताइए, हम गांव वाले अच्छे हैं या शहर वाले? परंतु एक तीसरी बात जो इन्होंने ये सब्जेक्ट रखा है, आत्मनिर्भरता। सचमुच भारत के गांव से ही है, शहर वालों को गोली लेके नींद करते हैं, परंतु खेती में काम करने वाले किस तरह से हंसते हुए खेलते हुए, उनको देख के हमको खुशी होती है कि ऐसे खुशी का चेहरा हम शहरों में नहीं देख पाते हैं। जब अमेरिका में मैं गया था, ट्रेन में बैठा था, मैं देखता हूं सब एकदम ऐसा साइलेंस में, सुबह सुबह हर एक अपना काम पे जा रहे हैं वगैरह। कभी मैंने नहीं देखा एक दो से चैट करते हुए, बात करते हुए, बिल्कुल नहीं। तो मैंने देखा हमारा गांव में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज शहर में तो बताया इतना बिजी है, बाजू में कौन है पता नहीं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं एक दो, वो भी किसी को पता नहीं। तो हम बच्चों को ईश्वर ने यहां हमारी बहनों द्वारा ये बताया कि ईश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है विश्व, जिससे हम सब खाते हैं, सभी सब कुछ करने के बाद दो रोटी चाहिए, तो इसीलिए ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है वो यौगिक कहती है, ईश्वर का कहती है। ईश्वर ने हम बच्चों को दिया, क्योंकि हम बच्चे भी त्वमेव मातास्य पिता कहते हैं ईश्वर को। तो इसीलिए हम गांव वाले सच्चे ईश्वर के बच्चे हैं। तो सारे दुनिया को खिलाने वाले आज जिंदा है, तो ईश्वर ने दिया हुआ ये प्रकृति के कारण और खेती करने वालों के कारण हो रहा है। तो इसीलिए ये प्रकृति को भी हम लोग नमन करते हैं, माता कहते हैं। तो मां कैसे अपने बच्चे को निस्वार्थ, वो बच्चा बड़ा होने तक सेवा करती है, इसी प्रकार ये जो धरनी माता हमको अंत तक, ये शरीर छोड़ने तक हम सबका साक्षी होके हम देखते हैं कि पालना करती है। तो इसीलिए आप लोगों को ईश्वर को प्रार्थना करते हुए, उनसे शक्ति प्राप्त करते हुए, इस योगिक केती को सारे विश्व में आप प्रचार करेंगे, सबको बताएंगे, और वो दिन दूर नहीं है ये भारत फिर से स्वर्णिम युग बन रहा है, आप देखते जाएंगे। परंतु आप जानते हैं, तो घर को रोज साफ करते हैं फिर अच्छा लगता है, ऐसे ईश्वर भी सृष्टि का अभी सफाई करने का कार्य शुरू कर चुके हैं। जहां देखो एक ही बात सुनने में आ रहा है कि मैंने आज ये बॉम्ब बनाया, मैंने आज ये बॉम्ब बनाया, और साइंस में हमको बता रहे हैं इतना बन चुका है फिर भी बना रहे हैं, कि सबके मन में इस समय पर विनाश के अलावा इस सृष्टि के बारे में और कुछ नहीं सोच रहा है। ऐसे समय पर हम सबको तो विशेष ईश्वर का जो पार्ट बजाने वाले हम गांव वाले, खेती करने वाले, सबके ऊपर रहम करते हुए अंत तक हम लोग उस ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, शक्ति देते हुए, इस धरती को, हम जो यहाँ रहने वाले सब जीव प्राणियों को आहार देने वाले सेवा, ईश्वर की जो सेवा पालना जिसको कहते हैं, तो वो कार्य ईश्वर आप द्वारा करा रहे हैं। आप सबको फिर से मैं धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाएंगे ऐसी आशा करता हूँ। ओम शांति।
किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, बहुत बहुत दिल से भ्राता जी आपका धन्यवाद। और अब मैं आप सबको एक विशेष बात बताना चाहूंगी। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के पगड़ी में एक और कलगी लगने जा रही है। विशेष खुशी है आज इस प्रभाग के भाई बहनों के बीच में, क्योंकि हमारे उपाध्यक्ष भ्राता राजू भाई जी को एक विशेष डिग्री से नवाजा गया है। कर्नाटक बेलगाम जोन के भाई बहनों के प्रयास से इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी जर्मनी की ओर से ब्राता जी को डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री से नवाजा गया है। और आपका सम्मान और सत्कार हुआ है, ये डिग्री परमात्मा ने आपको दी है। एक विशेष बात ये भी भाई साहब के व्यक्तित्व से कहना चाहूंगी कि राजू भाई जी बहुत निर्माण, विनम्र और निस्वार्थ भावना वाले हैं। भाई आइए, आप लोग आइए, प्राता जी आप आगे आइए। और डिग्री के दौरान जिस तरह से भ्राता जी को सम्मानित किया जाता है वो सब आप भी देखेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत ही विनम्र, और जिन्होंने कभी ये संकल्प में भी नहीं सोचा कि उन्हें इस तरह से डिग्रियां मिले, निस्वार्थ भाव से दिन रात भारत वर्ष की सेवाओं में लगे रहे। एक विशेष बात आप सबसे, आपका ध्यान मंच की ओर एकत्रित करते हुए कहना चाहूंगी कि सिंह अगर किसी पत्थर पे बैठ जाता है तो उस पत्थर को भी सिंहासन कहा जाता है। इसलिए सिंहासन की ख्वाहिश ना करते हुए सिंह बने, ताकि जहां भी बैठे वो अपने आप सिंहासन हो जाए। ब्राता जी ने कभी भी सिंहासन की ख्वाहिश नहीं की है, लेकिन परमात्मा के संदेश को झिलते हुए दिन रात सेवा में लगे रहे, और यही उनकी सेवा संसार ने और समाज ने देखी। बेलगांव अंबिका दीदी के जॉन के भाई बहनों की दृष्टि इन सेवाओं पे हमेशा रहती थी, और एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने गवर्नमेंट को दिया और इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी जर्मनी की ओर से आपको डिग्री से नवाजा गया है। आप सब करतल ध्वनि से भ्राता जी की सेवाओं की सराहना करेंगे। मैं चाहूंगी कि अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, सम्मान और सत्कार का इससे विशेष कार्य और क्या हो सकता है। भ्राता जी इतना शून्य व्यक्तित्व है, आप सबको पता है कि उस शून्य को किसी एक के साथ बिठा दो, 10 के साथ बिठा दो, 100 के साथ बिठा दो, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती ही जाती है। भ्राता जी वह शून्य व्यक्तित्व है जो अगर हमारे आस पास भी आकर के बैठ जाते हैं तो हमारा अपना वजन जो है वह बढ़ जाता है। आज संसार ने आपकी सेवाओं को नवाजते हुए इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी जर्मनी की ओर से डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री से आपको सम्मानित किया है। और बहुत दिल से कहूंगी कि ईश्वरीय सेवा जब जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, ये डिग्री है जिसे आपको सम्मानित किया गया है कर्नल ध्वनि से। जोरदार ताड़ियों से राता जी, डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर राता राजूबाई जी का हम सम्मान और सत्कार करते हैं। आप अपने दो शब्द आज के दिन पे हम सबके सामने रखिए राता जी।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्यारी संतानों, आज की सम्माननीय मंच हमारे आदरणीय करुणा भाई जी तथा सभी अतिथिगण, परमात्मा ने हम सबको एक सुंदर खेती सिखाई है। ये डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर टाइटल से जो नवाजा जा रहा है, लेकिन मुझे तो परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों की खेती सिखाई गई है। और उस श्रेष्ठ कर्मों की खेती में परमात्मा हम सबको कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म वो हैं जिसमें कभी भी कोई डिग्री की आस न हो, कर्तापन की इच्छा न हो, मैंने किया है ये मैंपन का भाव न हो, तभी वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पढ़ाई की डिग्री लेने का मैं भरियक प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक वो डिग्री मुझे मिली नहीं है, और जब वो डिग्री मिल जाएगी तो ये भारत भूमि स्वर्णिम भूमि बन जाएगी। दिन रात एक ही प्रयास है कि हम सब ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की खेती करें जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये डिग्री परमात्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त हो जाए। उसी डिग्री की पढ़ाई हम कर रहे हैं और सबको पढ़ा रहे हैं। बाकी ये डिग्री जो निमित्त मात्र सेवा के लिए, और खास करके हमारे बेलगाम के शेखर भाई जी का बहुत समय से अनुरोध रहा कि प्लीज आप हमें छुट्टी दें। हमने कहा ये डिग्रियां हमें क्या जरूरत है, किसके लिए चाहिए, जब परमात्मा हम सबको इतनी बड़ी डिग्रियों से सम्मानित कर रहे हैं तो हम राजयोगी हैं, हम परमात्मा के सेवाधारी हैं, हमें कोई ये डिग्रियां आगे नहीं बढ़ा रही हैं, हमें तो परमात्म डिग्री मिली हुई है और उसी डिग्री के आधार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति।
भाइयों बहनों, ये है राजू भाई जी जिनके एक एक शब्द में यथार्थता थी। यही भाव उनके थे कि इन डिग्री के पीछे वो कभी नहीं लगे। यही वो सिंह है जो जहां भी बैठा अपने आप अपना सिंहासन बनाया है। एक बार करतल ध्वनि से हम आपका धन्यवाद करते हैं। भ्राता करुणा भाई जी हम सबके बीच से विदाई लिया हुआ है। और अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा परम वंदनीय सरला दीदी जी को आमंत्रित करने जा रही हूँ। ऐसी अदा से ले चले हैं आप चरागों को, जब तक सफर रहा इस दिए को आपने बुझने नहीं दिया है। परम वंदनीय आदरणीय सरला दीदी जी।
ओम शांति। 3 दिन से आप सभी के ऊपर इस ज्ञान सरोवर में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा जिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है उसके निमित्त, विषय तो बहुत अच्छा है, सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज्य, इसकी बड़ी सुंदर बरसात आपके ऊपर हो रही है। हर एक वक्ता खूब अनुभवी हैं, जो इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, अपनी दिल की भावनाएं बहुत प्रेम से व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं ऐसा महसूस करती हूं कि तीन दिन में आप सब इस विषय को सुनकर के बड़ी अच्छी रीति से भीग चुके होंगे। जो भीगे हैं वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा, थैंक्स। अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि हर वक्ता बड़े दिल से अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। मैं पहले दिन भी कहा था, आज पुनः पुनरावर्तन कर रही हूं, जो सभा में बैठे हैं और मंच पर नहीं आए हैं, आपकी भी इस मंच पर भागीदारी है। यदि आप सभा में इतने शांति से बैठ करके नहीं सुनते थे तो इन मंच पर बोलने वालों का क्या हाल होता। इसलिए आपकी श्रेष्ठ भागीदारी, फिर भी साथ साथ आपके कोई भी सुझाव और विचार हैं आप हमें लिखित रूप में देंगे, हम उसके ऊपर विचार करेंगे और पुनः उसको क्रियान्वित करेंगे। अब मैं आती हूं आज का जो हमारा विषय है, जिसके लिए मंच पर उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष माननीय भ्राता करुणा भाई जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय भ्राता कमल पटेल, पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, हमारे दूसरे अतिथि माननीय भ्राता डॉक्टर रामधन जी, हेड रिलायंस फाउंडेशन बूंदी, और जिन्होंने आज के विषय को बहुत सहज और सरल शब्दों में स्पष्ट किया, ऐसी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी क्रीना बहन, और साथ ही साथ अति सम्माननीय जिनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा आज्ञाओं को, श्रीमत को जीवन में धारण कर जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा देना, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाना, संपूर्ण त्यागी। अभी भी बार बार आपके मुख से यही निकल रहा था, मुझे तो मेरे बाबा ने, परमात्मा ने राजयोगी और राजऋषि की सबसे बड़ी डिग्री दे दी है, उसके सामने ये डिग्रियां कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जिन भाई बहनों का संकल्प था आपकी सेवाओं को देखते हुए, और उस भावना से आपको ये डिग्री प्रदान की गई, ऐसे ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई, ग्राम विकास प्रभाग के माउंट आबू कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई, आपके अंदर भी हमेशा यही उमंग रहता है कि प्रभाग की प्रवृत्तियां समग्र भारत में, न केवल भारत, देश विदेश में पहुंचे, और उन प्रवृत्तियों के द्वारा ये स्वर्णिम भारत का निर्माण हो। मंच का कुशल संचालन करने वाली ब्रह्मा कुमारी किरण बहन, और सभा में उपस्थित आप सर्व भाई बहने, जैसा कि किरण बहन ने पहले कहा कि आप एक नहीं है, एक स्थान के नहीं है, यहाँ सारे भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए आप सभी हैं, तो समग्र भारत यहाँ उपस्थित है। इन तीन दिनों के दौरान जिन सब भाई बहनों के साथ मिलना हुआ, सचमुच ऐसे लगता था एक एक चुना हुआ रतन परमात्मा पिता ने इस कॉन्फ्रेंस में भेजा है। एक थे हमारे वो कृषि अधिकारी जिन्होंने सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में, ग्रामीणों को सशक्त बनाने के अपना योगदान दे रहे हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में कृषि अधिकारी। दूसरे हमारे थे कृषि वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र से, जैसे हमारे माननीय ब्राताकल आनंद कुमार जी थे वीसी, फिर पूर्व मंत्री हैं, ऐसे जो कृषि क्षेत्र के अंदर में किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी खेती की टेक्निक उन्हों तक पहुंचा रहे हैं। और तीसरा, अलग अलग जगह से पहुंचे हुए एनजीओस, जो अभी हमने थोड़े समय पहले मंच पर देखा, हर एक एनजीओ का लक्ष्य है कि हम गांव के विकास के लिए, कोई वाटर पर काम कर रहा है तो कोई सोलार पर कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, इसलिए सब विशेष और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज का विषय है आत्मनिर्भर गांव द्वारा स्वर्णिम भारत का पुनर्निर्माण। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखते हैं तो ये एहसास होता है कि ये हमारा भारत आत्मनिर्भर था, संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर था, और उस आत्मनिर्भरता का आधार किसान की आत्मनिर्भरता थी, अर्थात अपने बीज, अपनी खाद, अपने संसाधन, अपना श्रम। आज हमें ये सुनने को मिलता है खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, तब अपना श्रम था। सुबह को आप देखो सारा परिवार उठ करके जाता था, बड़े प्यार से खेत में बैठ करके खेती करते थे, कार्य करते थे, धूप के समय छांव में बैठ करके रोटी खाई, छाछ पिया और बड़े आनंद का अनुभव करते थे। अपने ही संसाधन थे, अपना बाजार, अपना दाम था और हर किसान खुशहाल था। साथ ही साथ केवल इतना नहीं, उन किसानों के अंदर में प्रकृति के प्रति प्रेम था, सद्भावनाएं थी। जिस भावना से वो खेती करते थे तो वो अन्न, जिससे उनके जीवन में भी खुशहाली थी और खाने वाला भी खुशहाल था। पूर्व वक्ताओं ने वर्णन किया है, मैं अधिक ना कहते हुए, लेकिन जब विदेशी शासकों की स्पर्दृष्टि पड़ी, ये हमारा आत्मनिर्भरता का ढांचा टूट गया। और जो खुशहाल किसान था उसकी दशा दयनीय और दुर्दशा हुई। तब बापू गांधी जी ने ये संकल्प किया कि मुझे इस भारत देश को आजाद कराना है। भारत आजाद हुआ, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जो हमारा बिखरा हुआ ढांचा था उसको हम पुनः स्थापित नहीं कर सके। तब फिर गांधी जी ने फिर से जब किसानों की इस दशा को देखा, तब उन्होंने ग्राम स्वराज्य की योजना बनाई, जिसके 5 मुद्दों पर उन्होंने कार्य किया, उसका मैं वर्णन नहीं करती हूं, और प्रयास किए गए, लेकिन हम सबके सामने वो दृश्य है कि इस गांव का विकास नहीं हुआ, हमारा गांव आत्मनिर्भर नहीं बना। 2014 से पुनः फिर से किसानों के प्रति हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प किया कि हमें पुनः अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना है और उसको स्वर्णिम भारत बनाना है। बहुत सारी योजनाएं हैं, आप सब परिचित हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये योजना और अनेक योजनाएं, लेकिन मैं आप सब से ये पूछना चाहूंगी, क्या इतनी योजनाओं के पश्चात और ऐसा भी कहते हैं कि सबसे अधिक जो हमारा धन व्यय होता है सरकार का वो डिफेंस पर है, उसके बाद सेकंड नंबर आता है गांव के विकास का, कृषि पर आता है। इतना सब कुछ करने के पश्चात भी पहले से काफी प्रगति हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यदि हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें बैलेंस के साथ चलना है, संतुलन। एक भौतिकता का अर्थात आधुनिकता का और दूसरा है आध्यात्मिकता का। जब तक ये समन्वय नहीं होगा, आपको यहां पर ज्ञान सरोवर में केवल अच्छा अच्छा भोजन कराया जाए, पानी ना दिया जाए, क्या होगा? यदि सिर्फ पानी दिया जाए, भोजन ना दिया जाए, तो ये दोनों अभिन्न अंग हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये संतुलन था। मां धरती के प्रति प्यार था, आपसी प्यार था, बैलों के लिए प्यार था, उनकी पूजा करना, ये सारी भावनाएं समाप्त हो गई हैं। अब मैं इसके साथ में उस आयाम को जोड़ना चाहूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या हम आत्मनिर्भर गांव बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। धन्यवाद। व्यक्ति समाज की इकाई है। अगर समाज का निर्माण करना है तो पहले किसका निर्माण करना पड़ेगा? बोलिए, व्यक्ति का। दुनिया को छोड़ दीजिए, लेकिन जो यहां इस परिसर में, इस सम्मेलन में बैठे हुए हैं, क्या आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? बनाना नहीं कहती हूं। जब तक इकाई नहीं सुधरेगी तब तक समाज नहीं सुधरेगा। और उस इकाई में इतना अच्छा शब्द है आत्मनिर्भर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप आत्मनिर्भर हैं या आप भी परवश हैं? बोलिए, जो कहते हैं हम परवश नहीं है वो हाथ खड़ा करिए, क्योंकि आज की परवशता, और सब छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इतना छोटा सा ये मोबाइल, इसने ऐसा बांध दिया है, उसकी परवशता। एक बार किसी ने रात को 2 बजे मैसेज किया होगा, मैंने तो सुबह में देखा, तो वो कभी कभी बहन आती थी, माता थी, रोटरी में उसकी मेंबर थी, तो मैं उसको पूछा, मैंने कहा तुमने रात को 2 बजे फोन ये मैसेज किया? कहती थी दीदी नींद नहीं आ रही थी, नहीं तो मोबाइल लेकर के बैठी थी। हमने टाइम को पास करने के लिए किस चीज का आधार लिया जो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है? आज व्यक्ति जो सुबह उठता था, हम सब जानते हैं सुबह की शुद्ध वायु जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, सुबह उठ करके उस परमात्मा का नाम लेना, उस खेती का काम कराना, आज भले ये भी मैं जानती हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में सारा दिन जो व्यक्ति काम करता है शायद संभव ना हो, लेकिन विद्यालय का अनुभव ये कहता है कि यदि आप संकल्प करेंगे तो वो संभव होगा, और वो आत्म चेतना आपकी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करेगी और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। ये ताकत है इस सत्य ज्ञान में। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ है, हम कहते हैं मैंने सोचा नहीं था लेकिन मेरे मुख से निकल गया, मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने कर लिया। ये है परवशता। जब हम पहले आत्मा की जागृति करेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, आत्म जागृति के बिना आत्मनिर्भर होना असंभव। आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित होती है, सबसे पहला, कल मैं किससे मिल रही थी बोलते मुझे बीच में याद आया, एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छा कहा, गोविंद भाई थे किसी एनजीओ के, क्रीडा बॉम्बे के, उन्होंने एक शब्द कहा, हम जो दे सकते हैं वो देते हैं, लेकिन हम साधन दे सकते हैं, सोच नहीं दे सकते हैं, इसलिए सफल नहीं है। उसमें हम आप बहनों का सहयोग चाहते हैं। ये विद्यालय इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमात्मा पिता ने आकर के सबसे पहले हमारी सोच बदली, तुम आत्मा हो। और जब हमने अपने आप को इस चीज को महसूस किया, दूसरा हमको कहा तुम शिव शक्ति हो। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं आत्मा शिव शक्ति हूं। और आज हजारों शिव शक्तियों को तैयार किया है, जिन शिव शक्तियों ने ये बीड़ा उठाया है, हम गांव तो क्या, इस भारत को स्वर्णिम बना करके रहेंगे। इसलिए आप सब सिर्फ सोच बदलिए, सोच से संस्कार बदलेगा और संस्कार से संसार बदलेगा, बोलने से सुनने से नहीं। जो एक हमारे अंदर में ईगो है, सबसे बड़ी समस्याओं का जो मूल कारण वो क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो। और इस ईगो ने विश्व की इतनी समस्याएं, चाहे विश्व का हो, भारत का हो, समाज का हो, परिवार का हो, आज एक एक परिवार के अंदर झगड़ा है। उसका कारण है हम आत्मनिर्भर नहीं बने, हमारा संस्कार नहीं बदला तो संसार नहीं बदलेगा, और संसार नहीं बदलेगा तो स्वर्णिम कैसे होगा। तो मैं इस सभा के, इस कार्यक्रम के समापन पर आप सभी से ये एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी, हम सच्चे देशभक्त हैं, हमें आत्मनिर्भर बन करके गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का यहां से संकल्प लेकर के जाना है। तैयार हैं? तो खड़े हो जाइए। ओम शांति। मैं आत्मा संकल्प करता हूं कि आज से आत्म ज्योति जगाकर आत्मनिर्भर बनूंगा, अपनी आत्मनिर्भरता के पवित्र प्रकंपनों के द्वारा गांव के किसानों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, उनकी सोच जिससे संस्कार बदले और स्वर्णिम भारत का निर्माण हो, इस संकल्प को हम सब मिलकर के पूर्ण करेंगे। परमात्मा की शक्तियां प्रेरणा हमारे साथ है और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ये संकल्प आप साथ लेकर के जाएंगे, हर रोज सुबह में इसको दोहराएंगे कि मैंने परमात्मा से ये प्रतिज्ञा की है, और आप अपने कार्य में सफल होंगे। ऐसी दिल की शुभ भावना और मंगल कामनाओं के साथ आप सबका खूब 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 दिल से आभार, शुक्रिया, अभिनंदन और ये मुबारक कि आप एक आत्मनिर्भर बन करके श्रेष्ठ कार्य करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, एक बार जोर से करतल ध्वनि से परम वंदनीय श्रद्धे दीदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी ये रिट्रीट का समापन सत्र भी समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन समाप्ति शब्द कहना मन नहीं करता है। मैंने शुरू में कहा था कि कल की सुबह शून्य से नहीं अनुभव से होने वाली है। आपने 3 दिन आध्यात्मिकता का अनुभव कर लिया है, इसलिए कल की सुबह और कल का दिन आपके लिए समाप्ति का दिन नहीं है, लेकिन एक नई आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का दिन है। और यही दिन में, यही दिन की शुभकामनाओं को लेकर के हम अपने कर्म क्षेत्र की ओर जाने वाले हैं। तब जब दीदी जी बात कर रहे थे, मुझे एक छोटा सा प्रसंग अपने कॉलेज का याद आ रहा था कि एक बार किसी ने मुझसे पूछा, मजे में हो? तो मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने कहा, दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसे चाहिए, आनंद के लिए प्रभु प्यार चाहिए, और मुझ पर प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्यार है। वही प्रभु प्यार, प्रभु कृपा आपने भी प्राप्त कर ली है। कल सुबह अपने कर्म क्षेत्र की ओर जब जब आप प्रयाण करेंगे, ये प्रश्न आपके सामने भी आएगा, जवाब क्या देना है। ये प्रश्न मैं आपको दे देती हूँ कि अब आप अपने आप से पूछिए। आइए शशिकांत भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय के संयोजक हैं, इससे विशेष 1986 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। जब से ग्राम विकास प्रभाग की स्थापना हुई है, तब से दिन रात पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण करके आपने इस सेवा को आगे बढ़ाने में अपना जी जान लगाया है। और अभी आप मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन में रिसेप्शन ऑफिस की सेवाओं को संभालते संभालते ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं को भी बहुत दिल से संभालते हैं और करते हैं। ब्राता जी आइए और सबका आभार कीजिए। ब्राता शशिकांत भाई जी,
ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए, ओम शांति। आज इस 3 दिन के कार्यक्रम का समापन हो रहा है। अरे घड़ी है आभार व्यक्त करने की। जब आभार शब्द आता है तो आप सभी के चेहरों से ये महसूस होता है कि आप यहां जो आए थे पहले दिन, क्या लेके आए थे आपके साथ? बोले, क्या लेके आए थे आप? भार का शब्द है बोझ, आपके कार्य का बोझ, आपके परिवार का बोझ, अन्य बातों का बोझ आप लेके आए। लेकिन ये ईश्वर का दरबार है, प्रभु प्यार का ये सागर है, और इस सागर में लहराने के लिए आप यहां आए हो। तो ये बाहर प्रभु पिता कहते हैं, बाहर जो है ना, अब यहां उतर करके जाए, भार महसूस करके नहीं जाना, भार उतार करके जाना, हल्के होके जाना। तो क्या 3 दिन में अपने स्वयं को हल्का समझा? यहां कुछ प्राप्ति हुई सभी को? थैंक यू। तो इस आज के समापन सत्र की अध्यक्ष हमारे आदरणीय, हमारी संस्था के पितामह कहे, हमारे वरिष्ठ कहे, हमारी सदा ही प्रेरणा मूर्ति, हमारे संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल परम श्रद्धेय करुणा भाई जी, जो हमारे बीच में से विदा हो चुके हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के इस समारंभ में पधारे तो उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस समारंभ की विशेष प्रेरणा मूर्ति, जिनकी प्रेरणा से 40 साल हम अपने बचपन से कहे तो कोई गैर नहीं होगा, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से, और कहा जाता है कि उनकी उंगली पकड़ करके आज हम यहां तक पहुंचे, ऐसे हमारी प्रेरणा मूर्ति हमारी आदरणीय, प्रातस्मरणीय, वंदनीय हमारी प्रभाग की अध्यक्षा श्रद्धेय सरला दीदी जी, आप इतनी व्यस्त होते हैं, आपके पास प्रभाग का कारोबार तो है ही, प्रभाग की सेवा में आप भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के किसानों को प्रेरित करती हैं, साथ साथ आपके पास बहुत बड़ा झुंड है, आपके पास 26 बड़े बड़े सेवा केंद्र और अनेक पाठशालाएं हैं, उन सभी का कारोबार आप संभालती हैं, इतने व्यस्त कार्यक्रम में होते हुए भी अपना अमूल्य समय केवल हमारे लिए अपने 5 दिन दिया और अपना अमूल्य मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त कराया, इसलिए दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, आभार है, आभार है। साथ में जिनकी छत्र छाया में हम रहे, जिनके साथ अंग संग रहे, और जिनकी मार्गदर्शना से, जिनके ज्ञान की गहन अनुभूति के अनुभवों से, जिनके योग के प्रयोग के द्वारा अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करना है, ऐसे परिवर्तक कहें, ऐसे हमारे प्रेरणामूर्ति, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय डॉक्टर राजू भाई जी आज हमारे बीच में उपस्थित रहे, इनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार करता हूं। जिन आज हमारे आज के मुख्य अतिथि कमल पटेल जी अपने भी हमारे बीच में अपने अनुभव के द्वारा हम सभी को प्रेरित किया, और आप भी अपने क्षेत्र में व्यस्त होते हुए भी 3 दिन का समय निकाल करके आए। भाई साहब आपको यहाँ अच्छा लगा? यहाँ अच्छा लगा तो आप एक प्रेरणा बन करके आप यहाँ जाना है, और अपने गांवों में अपने जिलों में इस योगिक खेती का प्रचार और प्रसार करना है। आप हमारे वरिष्ठ भ्राता हैं, तो छोटा भाई की विनंती है कि आप जरूर हमें सहयोग देंगे, और आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। तो आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारे बूंदी से आए हुए हमारे रामधन जाट जी अपने भी अपने अनुभव के द्वारा हम सभी को प्रेरित किया, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और जिनकी मधुर वाणी से मुख्य वक्ता के रूप में हमने सुना, और मैं तो पिछले 42 साल से सुनते आया हूं, जिनकी वाणी में धार है और ज्ञान के क्रम के द्वारा शक्तिशाली बनाती है, ऐसे हमारी आदरणीय हमारी वरिष्ठ सहयोगी प्रेरणा मूर्ति क्रीणा दीदी, आप भी अपनी सेवा में मुंबई में व्यस्त होते हुए भी जब भी हमारी ग्राम विकास की गतिविधियां होती है तो जरूर आप उपस्थित रहती है, तो आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम का सुंदर मंच संचालन जो कर रही है क्या कहें इनकी तो महिमा मैं कर नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। जिनको मैंने बचपन से देखा, ऐसे हमारी बहुत प्यारी बहुत लाडली हमारी किरण बहन, इनके लिए भी बहुत बहुत आभार है। आप भी अपने कॉलेज और साथ साथ ईश्वरीय कार्य में व्यस्त होते हुए भी आप यहां पहुंची, तो आपका भी तहे दिल से आभार करता हूं। साथ में जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इतना सुंदर नयन रम्य परिसर, इस परिसर की शोभा बढ़ाने वाली हमारी दो दीदियां, हमारी प्रभा दीदी जी और सुदेश दीदी जी। सुदेश दीदी जी हमारे ईश्वरीय कार्यार्थ कर्नाटक राज्य के दौरे पर है, हमारे बीच में नहीं पहुंचे हैं, तो भी दीदी जी की सूक्ष्म प्रेरणाएं, सूक्ष्म उनकी सूक्ष्म शक्तियों के वाइब्रेशन हम सभी के पास पहुंच रहे हैं। तो हमारी प्रभा दीदी, सुदेश दीदी, साथ साथ उनके सभी सहयोगी, जो भी हमारे किचन डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारे लाइट साउंड वाले हैं, इस हॉल को संभालने वाले हमारे भाई हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हमारे रिसेप्शन ऑफिस वाले हैं, साइट सीन वाले हैं, सभी हमारे ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों का कितना ना धन्यवाद करें, आभार दें, तहे दिल से उनका धन्यवाद है, आभार है। साथ में हमारे वरिष्ठ भ्राता, हमारे प्रेरणा मूर्ति, हमारे आदरणीय डॉक्टर राजू भाई जी का आज हमने सम्मान किया, और सम्मान इस डॉक्टरेट के लिए जी निमित्त बने, जिनके द्वारा भाई साहब को ये डॉक्टर की उपाधि मिली है। ऐसे हमारे बेलगाम जोन के शेखर भाई, शांता दीदी, ज्योति दीदी, साथ साथ हमारी अंबिका दीदी जो हमारी सब जोन इंचार्ज है, उन सभी बेलगाम निवासी भाई बहनों का, और विशेष हमारे गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का, उनके स्टाफ का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया है एग्रीकल्चर में। भाई साहब को एग्रीकल्चर की डॉक्टरेट देख करके सारे विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के शाश्वती युग का नामाचार आपने किया है। तो आप सभी यहां पधारे, आप सभी का भी मैं फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बारम्बार यहां आप आते रहे और आपकी प्रेरणाएं हमें मिलती रहे, प्रभु का ज्ञान आपको मिलता रहे, और हमारे कारवा हम सभी साथ साथ मिलकर के चलाते रहे, यही मेरी शुभ आशा है। इस शुभ आशाओं के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता शशिकांत भाई, दिल की सच्चाई किसी शब्द की मोहताज नहीं हुए, ये आप सब ने देखा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि सिर्फ 5 मिनट ही आपका हम लेंगे और ये सत्र समाप्त हो चुका है। एक दो सूचना है, कल सवेरे राजयोग शिविर के पश्चात कृषि वैज्ञानिक सभी कृषि अधिकारी भाई बहनों के लिए स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। कृपया आप इस सवेरे के राजयोग शिविर के सत्र में अवश्य उपस्थित रहे और उस शिविर के सत्र के पूर्ण होने के बाद तुरंत ही आप सबके साथ स्नेह मिलन दीदी जी और भाई साहब जी उपस्थित रह के करेंगे। दूसरा 10:30 बजे का जो सत्र है वो इस हॉल में ना चलते हुए इसी हॉल के नीचे मेडिटेशन हॉल है, जहां पे आपका काल चक्र का सेशन उस नीचे मेडिटेशन हॉल में 10:30 बजे चलेगा। साइट सीन में जाने वाले भाई बहन कल सुबह साइट सीन ऑफिस का संपर्क अवश्य करें। और अब मैं बहनों से कहूंगी कि मेहमानों को ईश्वरीय सौगात से नवाजा जाए और आप सब से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रणाली के अनुसार एक मिनट परमात्मा पिता की याद के बाद इस सभा मंडप से बाहर जाएंगे। करतल ध्वनि से भ्राता परम वंदनीय कमल भाई पटेल का धन्यवाद करते हैं। भ्राता राजूभाई जी के कर कमलों से परमात्मा आपको मिल रहे हैं। साथ ही हेड रिलायंस फाउंडेशन बूंदी से पधारे हुए भ्राता रामधन जाट भाई जी, डॉक्टर रामधन जाट भाई जी, भ्राता राजू भाई के दीदी जी के कर कमलों से सम्मान और भ्राता जी के हाथ से ईश्वरीय स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। और अब एक मिनट के लिए हम सब परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे।